का अगला शीर्षक है जिसके आगे राह नहीं, जो कि 11वां शीर्षक है। 20 वर्षों के इतिहास में छायावाद ने क्रमशः काफ़ी रूप बदला। 1935-36 ईस्वी तक जाते जाते छायावाद वही नहीं रह गया जो 16 या 18 में था। छायावाद के इस क्रमिक विकास की ओर स्वयं छायावादी कवियों तथा आलोचकों ने भी ध्यान दिया है। अन्य कवि धाराओं की तरह छायावाद में भी क्रमशः भावों का प्रसार हुआ और भावना तथा रूप विन्यास में प्रवणता आई। प्रकृति प्रेम से जिसका आरंभ हुआ था, अंत तक जाते जाते उसके प्रेम का प्रसार मानव जीवन तक हो गया। आंखें खुलते ही जिस पंत ने बाल बिहंगनी से प्रथम रश्म के विषय में जिज्ञासा की थी, छाया के प्रति अपना कुतूहल व्यक्त किया था, तारों से मौन निमंत्रण प्राप्त किया था और बादलों का छायामय मेल देखा था, उन्हीं का मन 32 तक जाते जाते मानव जीवन के दुख सुख से उन्मन रहने लगा। आरंभिक प्रणय का भी प्रसार हुआ और प्रण हुए के अनुकूल प्रेम भावना में व्यापकता आई। जिस निराला ने जूही की कली के साथ केली से काव्य आरंभ किया था, आगे चलकर 35 तक जाते जाते तुलसीदास की भांति रत्नावली से मुक्त होकर देश काल की चिंता करने निकल पड़े। जो पहले यमुना के प्रति अधिक स्वप्नशील थे, वही वन वेला में देश और समाज के पिस्सुओं की चिंता करने लगे। सन 24 की रेखा में जिन्होंने बड़ी उमंग के साथ लिखा था कि प्रथम जीवन में जीवन ही मिला मुझे चारों ओर, उन्हीं को मरण दृश्य भी आगे चलकर देखना पड़ा, जिसके लिए कभी संपूर्ण प्रकृति और सृष्टि ही मनोहरा थी तथा उसी में दिन रात डूबे रहते थे, उन्हीं को फिर सरोज की स्मृति में आंसुओं से तर्पण करना पड़ा। सौंदर्य के उपासक को राम की शक्ति पूजा का विधान करना पड़ा। जो कभी आकाश की चांदनी को ही सब कुछ समझते थे, उन्हें अब धरती का नरगिस श्रेष्ठ प्रतीत होने लगी। तात्पर्य यह कि निराला के काव्य का भी विस्तार हुआ। प्रकृति प्रेम और निजी प्रणय की सीमा से निकलकर वे जीवन संघर्ष में आए और उसमें लड़ते हुए अनेक अनुभवों को काव्य का रूप दिया। जो प्रसाद पहले आंसू में ही डूबे रहे, उन्हीं को कुछ ही वर्षों बाद आंसू के द्वितीय संस्करण में अपनी पीड़ा को मंगलमय ज्योति का रूप देना पड़ा। उन्होंने अपने आंसुओं को विश्व के आंसुओं में मिला दिया और यह मंगल कामना की, सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सुखमय जीवन में बरसो प्रभात हिमकंसा आंसू इस विश्व सदन में। अंत तक जाते जाते छायावाद का दृष्टिकोण कितना व्यापक हो गया, यह कामायनी में उठाई गई समस्याओं से प्रकट होता है। आरंभिक दिनों में तो सौंदर्य मुग्ध और प्रेम लुब्ध मन के लिए कोई समस्या ही नहीं थी। परिस्थितियों के संघर्ष में आने पर छायावादी कवियों को पता चला कि जीवन बहुत व्यापक है, उसमें प्रेम ही नहीं संघर्ष भी है और यह संघर्ष बहुत बड़े पैमाने पर जीवन के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में छिड़ा हुआ है। कामायनी तक जाते जाते कवि को यह सब अनुभव होने लगा। निजी आंसुओं के निहार में वंदनी रहने वाली महादेवी ने रश्मि के आलोक में जीवन की व्याप्ति का दर्शन किया और प्रखर ताप को झेलते हुए सांध क्षणों तक जाते जाते समाज व्यापी दुख की अनुभूति करने लगी। उनकी निर्भरी दुख की बदली का दुख केवल प्रणय व्यथा ही नहीं है, उसमें अनेक प्रकार के सामाजिक असंतोष घुले मिले हैं। इस प्रकार छायावाद के भाव जगत और विषय वस्तु का क्रमशः विस्तार हुआ। प्रसाद के साथ छायावाद के मूल विचारों और भाषा में प्रवणता भी आई। पल्लव में कच्चेपन की तुलना में गुंजन अधिक प्रवण है। पल्लव में अनामिका आंसू और कामायनी तथा निहार और निर्जा में भी है। इन दोनों छोरों में रूप विन्यास संबंधी भी अंतर है। पल्लव में कल्पना का जो अतिव्यय है, वह गुंजन तक जाते जाते कुछ संयत हो गया है। गुंजन में पल्लव की अपेक्षा मितव्ययिता है। इसी तरह छायावाद की अंतिम कृतियों में कोरे चमत्कार की अपेक्षा गंभीर भावानुभूति तथा छंदों वैचित्र की अपेक्षा जीवन का सहज संगीत है। आरंभ की सी 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 की सितकार बाद में कुछ कम हो गई, मेद छट गया, मांस बढ़ गया। जो बात पहले भारी घटा टोप और आडंबर के साथ 10-20 उपमाओं के सहारे कही जाती थी, वही पीछे अत्यंत सहज ढंग से 1-2 उपमाओं में अथवा यूं ही कह दी जा गई। अनामिका के यह सच है, कहा जो न कहा, तुम्हें खोजता था मैं पा नहीं सका, पथ पर मेरा जीवन भर दो। बादल गरजो आदि गीतों को गीतिका के सखी बसंत आया कौन तमके पार रे कह प्रिय यामिनी जागी आदि से मिलाकर देखने पर अंतर अस्पष्ट हो जाएगा। कहाँ तो सन 35 के इस गीत की सादगी संक्षिप्तता और प्रभाव की तीव्रता। बार बार हार हार मैं गया, खोजा जो हार छार में नया, उड़ी धूल तन सारा भर गया, नहीं फूल जीवन अविकच है यह सच है। और कहाँ गीतिका के इस गीत की अतिशय अलंकृति। आवृत सरसी उर सरसीज खिले, केसर के केश कली के छूटे, स्वर्ण सस्य अंचल पृथ्वी पर लहराया, सखी बसंत आया। गुंजन में भी जिस वातावरण को पंत ने पत्रों के आनत अधरों पर सो गया निखिलवन का मरमर जैसी एक पंक्ति में बांध दिया, उसी को पल्लव में संभवतः 4-6 उपमाओं के बिना न कहते। इस तरह छायावाद के क्रमशः व्यापक और प्रौढ़ होने का आभास मिलता है। आलोचकों ने छायावाद के इस विकासशील पक्ष पर काफी प्रकाश डाला, परंतु छायावाद के ऐतिहासिक विकास का एक दूसरा पक्ष भी है, जिसको अस्पष्टता के साथ प्रायः नहीं रखा गया है। सच पूछा जाए तो छायावाद की इस प्रौढ़ में ही उसकी ऋण भी निहित थी। एक तथ्य की ओर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता कि छायावाद का उदय ही स्वच्छंदतावादी कविता के अत्यंत विकसित और प्रौढ़ रूप में हुआ। श्रीधर पाठक और राम नरेश त्रिपाठी ने स्वच्छंदतावाद के जिस काव्यधारा का प्रवर्तन किया था, वह अपने अत्यंत विकसित रूप में पंत निराला प्रसाद का काव्य बनकर प्रकट हुई। इसलिए जिसे हम छायावाद का सशक्त प्रौढ़ और विकसित रूप कहते हैं, वह उसके उदय काल से ही मिलता है। उच्छ्वास और आंसू में पंत ने जो लिख दिया, उसकी काष्ठा तक भी नहीं पहुंच सके। निराला के परिमल में जो ताजगी, विद्रोह और विविधता मिलती है, वह फिर नहीं दिखाई पड़ती। प्रसाद और महादेवी का विकास यद्यपि बहुत धीरे धीरे और पंत निराला से थोड़ा भिन्न हुआ है, क्योंकि छायावाद का रंग उन पर देर से चढ़ा, फिर भी प्रसाद के आंसू में अनुभूति की जो तीव्रता है, वह बाद के प्रौढ़ चिंतन में दब गई। यही स्थिति महादेवी की भी आरंभिक कविताओं में है। प्रगति रचना के विषय में यह विचित्र बात है कि जीवन के आरंभिक दिनों में भावुकता के कारण प्रायः ऐसी रचनाएं निकल पड़ती हैं जिनको फिर प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। छायावाद की आरंभिक कविताओं में से कई श्रेष्ठ रचनाएं ऐसी ही हैं, लेकिन इन रचनाओं की श्रेष्ठता का कारण केवल किशोरावस्था अथवा कोरी आकस्मिकता नहीं है, इसका कारण सामाजिक है। छायावाद की आरंभिक कविताओं में प्राचीन रूढ़ियों के प्रति जो विद्रोह है, अपने परिवेश से जो तीव्र असंतोष है, व्यक्तित्व के विकास की जो आकांक्षा है, कल्पना के पंखों पर उड़ने की जो सहज उमंग है, प्रकृति के साहचर्य का जो सुख है, प्रेम के अनुभूतियों में जो मानवीयता है, विचारों में जो आदर्श है, और रूप विन्यास के क्षेत्र में नए नए प्रयोग करने का साहस है, वह सब एक एक करके कुछ ही दिनों में विलीन होने लगा। जिस छायावाद का आरंभ सामाजिक स्वाधीनता के लिए व्यक्ति के विद्रोह से हुआ, उसी का पर्यवसान समाज से व्यक्ति के पलायन में हुआ। सभी छायावादी कवि अंत तक जाते जाते या तो अपने जीवन की पराजय अनुभव करने लगे अथवा समाज को अपना शत्रु समझने लगे। विप्लव के स्वर में बादल राग गाने वाले निराला ने सरोज स्मृति में बड़ी व्यथा के साथ कहा, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। विरोधी शक्तियों से लड़ते लड़ते निराला घबरा चले थे। राम की शक्ति पूजा राम की नहीं, निराला की शक्ति पूजा है। अंतर इतना ही है कि राम को तो शक्ति मिल गई लेकिन निराला को न मिली। इस प्रसंग में जैसा कि डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है, कवि के जीवन में संघर्ष ही सत्य रूप में आया है, विजय की कल्पना मात्र रही है। राम की शक्ति पूजा में निराला को राम की जो करुणा असमर्थता है वह उस युग के व्यक्ति की असमर्थता है। उस दिन के राम रावण युद्ध में राम की हार नहीं हुई थी, आधुनिक मध्य युवर्गीय राम की हार हुई थी, क्योंकि रावण के और स्वयं शक्ति लड़ रही थी। राम वार तो करते थे लेकिन सभी प्रहारों को शक्ति विफल कर देती थी। यह शक्ति स्वयं राम की शक्ति थी जो अब रावण के पक्ष में हो गई थी। यह निराला का स्वयं अपना वर्ग मध्य वर्ग था जो अब पुराण पंथी सामंती दल से मिल गया था। इस राम को जरा जीर्ण रावण से भय न था और न उसकी परवाह ही थी, लेकिन वे उसे अपनी शक्ति का क्या करते। अपनी व्यवस्था बतलाते हुए वे कहते हैं, पश्चात देखने लगी मुझे बच गए हस्त, फिर खिंचा न धनु मुक्त जो बधा मैं हुआ त्रस्त। राम मुक्त होते हुए भी अपनी शक्ति की दृष्टि से बधे थे। मध्यवर्ग की बुद्धिजीवी लोगों की व्यक्तिक स्वाधीनता की सीमा पर ये पंक्तियां कितनी तीखा प्रकाश डालती हैं। मुक्त होकर भी वे अलक्षित रूप से बधे हुए हैं और हर तरह से बधे हुए हैं। इसलिए विभीषण के अनेक वीर वचन सुनने पर भी बोले रघुमणि, मित्रवर विजय होगी न समर, अन्याय जिधर है उधर शक्ति। अंत में जाम्बवान की राय से वे शक्ति की आराधना का संकल्प करते हैं। संघर्ष में पराजित व्यक्ति आराधना की ओर उन्मुख होता है और वह आराधना भी किसकी, उसी अपनी शक्ति की जो अब लावण्य का साथ दे रही है। जो होना चाहिए था वही हुआ। आराधना के समय भी शक्ति धोखा दे गई, तब पराजित हृदय शक्ति को धिकारने की जगह अपने जीवन और साधन को ही धिकारने लगा। धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। उन्हें दुख था तो केवल एक ही बात का, जानकी का उद्धार न हो सका, अपनी शक्ति को वे मुक्त न कर सके। अपने व्यक्तित्व की जिस स्वाधीनता के लिए व्यक्ति ने पुरानी सामंती व्यवस्था से लड़ाई मोल ली थी और उसे उम्मीद थी कि वह स्वाधीनता मिल जाएगी, अब उसकी आशा टूट गई। आराधना से निराला को कितनी शक्ति मिली यह तो उनका परवर्ती साहित्य ही बतलाता है, किंतु इतना निश्चित है कि 36 तक आते आते उनका मोह भंग हो गया था और तमाम आशावाद के बावजूद वे भीतर ही भीतर पराजय अनुभव करने लगे थे। 1937-38 के आसपास लिखी हुई ये पंक्तियाँ, मैं जीर्ण साज बहु छिद्र आज, मैं पढ़ा जा चुका पत्र न्यस्त, बिहग के वे पंख बदले किया जल का मीन। हो गया व्यर्थ जीवन में, रण में गया हार। छायावाद का सारा स्वातंत्र संघर्ष अकेले व्यक्ति का था और संगठित सामाजिक शक्ति के विरुद्ध अकेले अकेले लड़ने का यही परिणाम होता है। ऐसे संघर्ष में कहीं विजय मिलती है, समाज से लड़कर अकेले रहने से क्या स्वाधीनता मिलती है। व्यक्तित्व को जकड़ने वाले एक समूह से अलग होकर अपने व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए किसी अन्य सामाजिक समूह से रागात्मक संबंध स्थापित करने की आवश्यकता है। यदि मध्यम वर्गीय व्यक्ति ने अपने व्यक्तित्व की स्वाधीनता के लिए सामंती व्यवस्था से लड़ाई की तो अपने मध्य वर्ग के साथ उनका गहरा संपर्क होना आवश्यक था। आरंभ में वह अंत संगठन अवश्य था, परंतु जिस समाज व्यवस्था में योग्यतम ही जीता है का मात्स्य न्याय चालू हो वहाँ कभी संगठन टिक सकता है। भेड़ियों में दोस्ती कहीं हुई है, विघटन अनिवार्य था और वह हुआ। मध्य वर्ग का बुद्धिजीवी व्यक्ति व्यवसायियों तथा लंबी तनख्वाह वालों के बीच दूध की माखी हो गया। पंत की कविताओं से भी प्राय इसी विकास क्रम का पता चलता है। गुंजन तक आते आते उनमें एक अभूतपूर्व उन्मन विषाद छा गया। संध्या के एक तारा में उन्हें अपने जीवन का चित्र दिखलाई पड़ता था। उन्हें भी लगता है निखिल विश्व निर्जन। वे अपने को निष्फल इच्छा से निर्धन अनुभव करते थे। वे बड़ी तीव्रता के साथ अनुभव कर रहे थे कि एकाकीपन का अंधकार दूसरा है, इसका मुख भार, इसके विषाद का रे न पार। निराला के विपरीत पंत प्रायः प्रेम संग्राम के सिपाही रहे, इसलिए उनकी सामाजिक प्रतिक्रिया प्रायः ऐसी ही प्रतीकों में व्यक्त हुई। एक तारा का एकाकीपन उच्छ्वास आंसू और ग्रंथि के ही असफल प्रेम की तीव्र अनुभूति है, परंतु पल्लव ग्रंथि काल में कवि ने जहाँ विद्रोही की तरह अपने असंतोष को खुले ढंग से व्यक्त किया, गुंजन में उसे बौद्धिक मर्यादा और गंभीरता के आवरण में ढककर अपने मन को समझाते का पाठ पढ़ाना शुरू किया। कहाँ तो उच्छ्वास में उन्होंने लिखा था कि निरपराधों के लिए ही तो आहा हो गया क्या संस्कार कारागार है, और आंसू में और भी कड़े स्वर में कहा कि हृदय रो उनको है अधिकार, हृदय रो यह जड़ शिक्षाचार। और कहाँ एक तारा का मुख भार, अंतर्निहित असंतोष और फिर आदर्श के मृग मरीचिका में मन को बहलाना। एकाकी तौर के तारे के बारे में वे चाहे जितने जोर से कहें कि जानता नहीं वह छंद बंध वा रे अनंत का मुक्तमीन, लेकिन वह अपने एकाकीपन के अंधकार में बुरी तरह बंधा हुआ है। उसे वे अपने असंग सुख में विलीन कहकर अनासक्ति का चाहे जितना बड़ा पाठ पढ़ाएं, लेकिन वह अपनी आसक्ति को भूलने में असमर्थ है। संभवतः इसीलिए इन युक्तियों को बेकार होते देख वे अंत में कहते हैं कि लो देखो जगमग जगमग नव का आंगन लद गया कुंद कलियों से धन। इसलिए इन्हीं कुंद कलियों के साथ घुल मिलकर अपना मन बहलाओ। कल्पना के लोक में चाहे जितनी कुंद कलियों आ जाएं, लेकिन वास्तव में तो वह तारा एकाकी ही है। वह समाज की सत्ता को सोचकर वह अपना एकाकीपन थोड़ी देर के लिए भले ही भूल जाए, लेकिन उसके साथ आंतरिक लगाव के बिना सामाजिकता का वह क्षणिक आनंद टिकाऊ नहीं हो सकता। आगे भी पंत ने संस्कार को देखकर अपने निजी अभावों को भूलने की कोशिश की, लेकिन वास्तविक संपर्क के बिना वह आदर्श सदैव हवाई ही रहा, और इसीलिए उससे न तो उन्हें तृप्ति मिल सकी और न पाठकों को। प्रसाद में भी यह परिवर्तन अपने ढंग से हुआ। उन्होंने अपने अभावों को शुरू से ही रहस्यवादी रंग दिया। अपने इंद्रिय बोध को प्रायः वे अतीन्द्रिय स्तर पर व्यक्त करते रहे। कुछ दिनों तक यह अतीन्द्रिय अनुभूति चलती रही, परंतु धीरे धीरे उस लोक में भी पीड़ा की वास्तविकता असह्य होने लगी। तब मन को भुलाने के लिए ननुमधु और मंद का सहारा लिया, और इसी को तर्कसंगत परिणत तक ले जाकर उन्होंने चेतना और संवेदना को ही समाप्त कर दिया। चेतना लहर न उठेगी, जीवन समुद्र थीर होगा। जब तक चेतना है तब तक पीड़ा की अनुभूति है, इसलिए पीड़ा से मुक्त होने के लिए चेतना को ही समाप्त कर देना चाहिए। आरंभ में मद और मधु के द्वारा उन्होंने चेतना को निष्क्रिय करना चाहा, लेकिन जब देखा कि यह अस्थायी इलाज नहीं है तो चेतना की लहर का उठना ही समाप्त कर देना चाहा।